نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. خلاصہ قرآن کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کی رحمت سے تیسویں پارے کا تیسرا رب شروع کریں گے سورت فجر کے آغاز سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والفجر وليال نشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر. قسم ہے فجر کی اور دس راتوں کی اور جفت اور تاک کی اور رات کی جبکہ وہ رخصت ہو رہی ہو, کیا اس میں کسی صاحب عقل کے لیے کوئی قسم ہے؟ تم نے دیکھا نہیں کہ تمہارے رب نے کیا برتاؤ کیا اونچے ستونوں والے آدھے ارم کے ساتھ, جن کے مانند کوئی قوم دنیا کے ملکوں میں پیدا نہیں کی گئی تھی, اور سمود کے ساتھ جنہوں نے وادی میں چٹانیں تراشی تھی, اور میخوں والے فرعون کے ساتھ. یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے دنیا کے ملکوں میں بڑی سرکشی کی تھی اور ان میں بہت فساد پھیلایا تھا. فصب علیہم ربک سوط عذاب ان ربک لبالمرصاد. حقیقت یہ کہ تمہارا رب گھات لگائے ہوئے ہے. سوچیے اللہ کی ذات کیسی ہے. آخر کار تمہارے رب نے ان پر عذاب کا کوڑا برسا دیا. حقیقت یہ کہ تمہارا رب گھات لگائے ہوئے ہے. فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاكرمه ونعمه فيقول ربي اكرمن. مگر انسان کا حال یہ ہے کہ اس کا رب اس کو آزمائش میں ڈالتا ہے اور اسے عزت اور نعمت دیتا ہے, تو وہ کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے عزت دار بنایا, اور جب وہ اس کو آزمائش میں ڈالتا ہے اور اس کا رزق اس پر تنگ کر دیتا ہے. سوچیں دو مختلف حالتیں نا, ہر ایک بھی آتی ہیں, کبھی اچھے دن کبھی برے دن. تو کیا حال ہے؟ فیقول ربی یہانن, تو وہ کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا. کلا بل لا تکرمون الیتیم, ہرگز نہیں, یعنی جو تم کہہ رہے وہ ٹھیک نہیں ہے, بلکہ تم یتیم سے عزت کا سلوک نہیں کرتے اور مسکین کو کھانا کھلانے پر ایک دوسرے کو نہیں اکساتے اور میراث کا سارا مال سمیٹ کر کھا جاتے ہو اور مال کی محبت میں بری طرح گرفتار ہو. کلا اذا دکت الارض دکن دکا, ہرگز نہیں, جب کہ زمین کوٹ کوٹ کر ایک زار بنا دی جائے گی اور تمہارا رب جلوہ فرما ہوگا اس حال میں کہ فرشتے صف در صف کھڑے ہوں گے اور جہنم اس روز سامنے لے آئی جائے گی. سوچیے ذرا تصور میں بھی کیا آتا ہے. وجی یوم اذم بجہنم, ایک دم ایسے لگتا ہے کہ انسان کے ہاتھ ٹھنڈے ہو جائیں. یوم اذن یتذکر الانسان, یتذکر الانسان وانا لہ الذکرا, اور جہنم اس روز سامنے لے آئی جائے گی, اس دن انسان کو سمجھ آئے گی اور اس وقت اس کے سمجھنے کا کیا حاصل. یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی, وہ کہے گا کاش میں نے اپنی زندگی کے لیے کچھ پیشگی سامان کیا ہوتا. فَيَوْمَئِذِ اللَّهُ يُعَذِّبُ عَذَابَهُ احد, پھر اس دن اللہ جو عذاب دے گا ویسا عذاب دینے والا کوئی نہیں. وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ احد, اور جیسا اللہ باندھے گا ایسا باندھنے والا اور کوئی نہیں. جبکہ اس کے برعکس ایک دوسرا منظر, یا ایتہا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیہ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. دوسری طرف ارشاد ہو گئے نفس مطمئن, دعا کیجیے اللہ ہمیں نفس مطمئنہ بنا دے, چل اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ تو اپنے انجام نیک سے خوش اور اپنے رب کے نزدیک پسندیدہ ہے. شامل ہو جا میرے نیک بندوں میں اور داخل ہو جا میری جنت میں. ایک سٹریچ میں پوری سورت کا ترجمہ سنتے ہوئے آپ کو کیسا لگا؟ مجھے ایسے لگا کہ انسان کے دن کا آغاز فجر سے ہوتا ہے اور اس کی شام یا اس کی رات عام دنوں میں تو بستر پہ جانے سے ہو جاتی ہے, لیکن اگر زندگی کی صبح کو قرآن کے ساتھ تعلق کی صبح بنا لیں تو انسان کی رات یا ایتہا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیہ مرضیہ, یہ ہے मंजिल है ये। ज़िंदगी का हासिल क्या है कि इत्मीनान वाली ज़िंदगी बसर करो और इत्मीनान वाली मौत पाओ। जिस दिन का आगाज़ फजर से पहले हो जाए उस दिन में बरकत है, फिर उसमें नफ्से मुतमईना वाली कैफियत पैदा हो जाती है। इसी तरह जिस ज़िंदगी में इंसान के कुरान आ जाता है वक्त पे, तो मौत तक इंसान इतना एक्सपर्ट हो चुका होता है इन चीज़ों में कि फिर सुकून और इत्मीनान की मौत आती है। अल्लाह ताला इस सूरत में आखरत की जज़ा और सज़ा हमारे सामने ऐसे रखते हैं कि अब तुम खुद चूज़ करो। जुफ्त भी ज़िंदगी में आए और ताक भी आए। दुनिया की हर चीज़ जुफ्त मिलेगी, लेकिन रब की ज़ात ताक है। अगर तुम उसके हुक्मों के मुताबिक ज़िंदगी बसर करोगे तो कामयाब हो, और नाफरमानियाँ करोगे तो आद और समूद और फिरौन का अंजाम दिखा दिया, जिन्होंने अपने आप को बहुत बड़ा समझा, अल्लाह ने उनको सबसे छोटा कर दिया। किस तरह उस वक़्त लोग दुनिया के पीछे भाग रहे थे, आज भी भागते हैं। यतीमों के माल का लेना ये कोई नई बात नहीं और आज भी कोई पुरानी नहीं, हर दौर में लोगों ने ऐसा किया, लेकिन दुनिया में पता नहीं चलता। लेकिन एक दिन आएगा, या लैतनी क़द्दमतु लिहयाती, इसको हाईलाइट करें, बिल्कुल अपने ऊपर लें, हाय मैंने अपनी ज़िंदगी के लिए कुछ आगे भेजा होता। फिर अब सोचेगा इंसान, क्या भेजूं, कैसे करूं। एक प्रोजेक्ट था तो मैं सोच रही थी उसके बारे में कि क्या नाम हो, जैसे लगत था ना, कुछ अर्सा पहले से जहन में एक चीज़ चल रही थी, तो पता नहीं क्यों ये लफ्ज़ मेरे दिमाग में आ जाता है, क़द्दम तुली हयाती, इस दुनिया में रहते हुए मैं अपनी उस ज़िंदगी के लिए कुछ आगे भेज सकूं। तो हकीकत यह है कि ये ज़िंदगी हमें एक डिपॉज़िट स्लिप की तरह, इस तरह अपनी ज़िंदगी के अंदर की घड़ियों को, वक्त को, स्किल्स को आखरत के बैंक में डिपॉज़िट करवाना है कि जब अल्लाह ताला के पास जाएं तो उस वक्त पुकार लगे, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमईना। और नफ्स मुतमईना इंसान का बन नहीं सकता जब तक दुनिया की लालच और तमा हमारे दिल से ना निकल जाए, वरना तो करोड़पति भी गरीब है और मुफलिस है, और लखपति भी, जिसका पेट ही नहीं भरना उसको आप जितना मर्जी खिला दें, फिर वो नदीदे का नदीदा होगा। दुआ कीजिए, अब आखिरी घड़ियां हैं कुरान पाक के सफ़र की, कि अल्लाह हमारे दिल से दुनिया की हिर्स निकाल दे, हवस निकाल दे, और हमें इस दुनिया में रहते हुए अगली ज़िंदगी के लिए जीने वाला बना दे। हमारे सारे फ़ैसले आखरत के फ़ैसले हों। अब कुछ नया नहीं हमें चाहिए, जो हैं पहले उसको ख़त्म करेंगे, ये ख़त्म होगा, देखेंगे ज़िंदगी रही तो फिर कुछ और ज़रूरत पड़ी तो ले लेंगे। लेकिन असल अब सब कपड़े, जूते, खाने पीने, घर सामान आगे के लिए तैयार करना है। आज अगर आपने ये सोच लिया ना, तो आप सोचें कि आपने खुश रहने का राज जान लिया, और अल्लाह ताला हमें शक और शुबे से पाक दिल दे, ठंडे दिल के साथ अल्लाह को एक मानते हुए इस ज़िंदगी से गुजर जाएं, और अल्लाह ताला हमारी मदद करे। फिर मौत की वहशतें और घबराहटें कुछ नहीं, कब्र की तंगियां कुछ भी नहीं, जब अल्लाह ने बंदे के दिल को थाम लिया। अगली सूरत है सूरत अल बलद, शहर को बलद कहते हैं लेकिन यहाँ मक्का को कहा जा रहा है। ख़ास तौर पे शहर मक्का को अल्लाह ताला ने हमारे सामने पेश किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ला उक्सिमु बिहाज़ल बलद, वा अंता हिल्लुम बिहाज़ल बलद, नहीं मैं कसम खाता हूँ इस शहर मक्का की, और हाल यह है कि नबी, इस शहर में आपको हलाल कर लिया गया, यानी आपके ऊपर हर जुल्म रवा करना हलाल कर लिया इन लोगों ने, सताना खपाना, जहाँ जानवरों तक के लिए अमान है वहाँ आप पर जुल्म को हलाल किया। अयक्सब अल्लैं यक़दिर अलैहि अहद, लक़द खलक़ना अल-इंसान फ़ी कबद, और कसम खाता हूँ बाप यानी आदम की और इसकी औलाद की जो इससे पैदा हुई, दर हकीकत हमने इंसान को मुशक्क़त में पैदा किया, यानी दुनिया में आता भी मुशक्क़त करता हुआ है और करते करते जान कनी की मुशक्क़तों और तकलीफ़ों से गुजर जाता है। क्या इसने ये समझ रखा है कि इस पर कोई काबू ना पा सकेगा? कहता है मैंने ढेरों माल उड़ा दिया, क्या वो ये समझता है कि किसी ने इसको देखा नहीं? अलम नज अल्लहु आईनैन, क्या हमने इसको दो आंखें नहीं दी? वलिसानहु व शफतैन, और एक जुबान और दो होंठ नहीं दिए? और फिर इनका इस्तेमाल भी, व हदैनाहुन नजदैन, और क्या हमने इनको दो रास्ते नहीं सिखाए, नेकी और बदी के नुमाया रास्ते? मगर इसने दुश्वार गुजार घाटी से गुजरने की हिम्मत न की, और तुम क्या जानो क्या है वो दुश्वार गुजार घाटी? किसी गर्दन को गुलामी से छुड़ाना या फाके के दिन किसी करीबी यतीम या ख्वाब नशीन मिस्कीन को खाना खिलाना, फिर इसके साथ ये के आदमी इन लोगों में शामिल हो जो ईमान लाए और जिन्होंने एक दूसरे को सब्र और खलके खुदा पर रहम की तलकीन की। उलाइका असहाबुल मैमना, यही हैं वो लोग जो दाएं हाथ वाले हैं। और इसके बरक्स, वल्लज़ीना कफरू बिआयातिना हुम असहाबुल मशअमा अलैहिम नारुम मूसदा, ये हैं वो लोग जो दाएं बाजू वाले और जिन्होंने हमारी आयात को मानने से इनकार किया, वो बाएं बाजू वाले हैं, इन पर आग छाई होगी। आप देखिए कि मक्की सूरतों का बिल्कुल नुमाया अंदाज है। सहाबा अल्लाह के नबी के ऊपर जुल्म करने वालों को बता दिया, आज जो कर रहे हो करते रहो शौक से, एक दिन आएगा कि तुम्हें यहाँ से निकाल दिया जाएगा। और एक छोटी सी सूरत में इतने छोटे छोटे जुमलों में कितने खूबसूरत तरीके से जोड़ दिया। इसका मौजू दुनिया में इंसान की और इंसान के लिए दुनिया की सही हैसियत को समझना और समझाना, और ये तक बता दिया कि अल्लाह ने इंसान के लिए नेकबख्ती और बदबख्ती के दोनों दरवाजे खोल दिए हैं, दोनों रास्ते हैं। देखो, चलो, गौर करो, अल्लाह ने सब असबाब दे दिए, आंखें, कान, दिल, दिमाग, सब है। इस्तेमाल करोगे तो सआदत की राह चलोगे, अच्छे अंजाम को जाओगे, मिस यूज करोगे तो बदबख्ती को इख्तियार करके बुरे अंजाम से दो चार होगे। और बीच ही बीच में अल्लाह के नबी और आपके साथियों पर जो तकलीफ़ें थी उस दौर में, उनको पेश करके हज़रत आदम का तस्करा कर दिया गया और बता दिया कि तुम इस दुनिया में मुशक्क़त के लिए आए हो। दिस वर्ल्ड या दिस लाइफ इज़ नॉट अ बेड ऑफ रोज़ेस, यहाँ तुम मज़े करने नहीं आए, ये फूलों की सेज नहीं है। मेहनत मेहनत मेहनत, काम काम काम, जितना माल लुटा लोगे, शाह खर्चियाँ कर लोगे, लोगों को खुश करोगे, कल अल्लाह के सामने खड़ा होना पड़ेगा। अदब के साथ, इखलाक के साथ जियोगे तो कामयाब हो, नफ्स पे जबर करोगे तो ये दुश्वार खाटी उबूर करनी मुश्किल होगी। तो कीजिए कि अल्लाह ताला हमारा दिल खोल दें। शायद ये आखिरी सूरतें ही हैं जो हमें बहुत सारी चीज़ों से इस वक्त रोकने पे तैयार कर दें। अल्लाह ताला हमें अपनी रहमत में रखे। हम सब साथ साथ अपना जायज़ा भी लें। जब कुरान पाक शुरू हुआ था ये वाला, उसमें और आप में मेरे में क्या फ़र्क है? उतनी फजूल खर्चों जितनी तब थी, ज़िंदगी का वही हाल हुलिया और नक्शा जो उस वक़्त था, तो फिर तो हमें कुछ भी ना मिला इस किताब से। फिर तो बस हमने आतन पढ़ा, एक दफ़ा और पढ़ लिया। अमल के लिए पढ़ना है तो फिर इसके लिए इंसान को ख़ुद खुद खुलाना पड़ेगा। अगली सूरत देखते हैं और इसके लिए यही दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारे दिल से दुनिया की कसरत और हद से बड़ी भी मोहब्बत निकाल दे। सूरत शम्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वश्शम्सि वदुहाहा والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها। सूरज और उसकी धूप की कसम, सोचिए कैसा लगता है, सूरज की कसम, धूप की कसम, और चांद की कसम जब के वो इसके पीछे आता है, और दिन की कसम जब के वो सूरज को नुमाया कर देता है, और रात की कसम जब के वो सूरज को ढांक लेती है, और आसमान की और उस ज़ात की कसम जिसने इसे कायम किया, और ज़मीन की और इस ज़ात की कसम जिसने इसे बिछाया, और नफ्से इंसानी की और उस ज़ात की कसम जिसने इसे हमवार किया, फिर इसकी बदी और परहेजगारी इस पर इल्हाम कर दी। इतनी कस्मों का जवाब क्या है? कद अफलह मन ज़क्काहा व कद ख़ाब मन दस्साहा। यकीनन फलाह पा गया वो जिसने नफ्स का तज़किया किया और नामुराद हुआ वो जिसने इसको दबा लिया। समूत ने अपनी सरकशी की बिना पर छुटलाया। जब उस कौम का सबसे ज्यादा शकी आदमी बिफर कर उठा तो अल्लाह के रसूल ने इन लोगों से कहा कि खबरदार अल्लाह की ऊँटनी को हाथ न लगाना और इसके पानी पीने में रुकावट न बनना, मगर उन्होंने इसकी बात को झूठा करार दिया और ऊँटनी को मार डाला। आखिरकार इनके गुनाह की पादाश में अल्लाह ने इन पर ऐसी आफत तोड़ी कि एक साथ सबको पेबंद खाक कर दिया, यानी मिट्टी के सपुर्द किया, और उसे अपने इस फेल के किसी बुरे नतीजे का कोई खौफ न था। अल्लाह अकबर, यानी इंसान जब गुनाह करे और बेखौफ हो जाए तो ये बड़ी सख्ती की बात है। सूरज शम्स है, उसके ऊपर बात कर दी। कमर नाम की सूरत भी पीछे आपने पढ़ ली। आप देखिए कि कुरान पाक में बेजान चीज़ें जब ज़ाहर हमें दिखती हैं उनकी भी कस्में हैं, क्योंकि ये अल्लाह की मखलूक है। पूरी सूरत का मजमून क्या है? नेकी और बदी का फ़र्क समझाना और लोगों को बुरे अंजाम से डराना, और जो इस फ़र्क को समझने से इनकार करे और बुद्धि की राह पर चले फिर उनको इसकी पकड़ का एहसास दिलाना। अल्लाह ताला ने सूरज चांद दिन रात ज़मीन आसमान की बातें की कि सब मुख्तलिफ हैं एक दूसरे से, आसार फ़र्क है, नताइज फ़र्क हैं। इसी तरह याद रखो कि नेकी और बदी भी एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। इनके असरात तुम्हारी अगली ज़िंदगी पर मुरत्तब होंगे। अच्छे करोगे तो वहाँ अच्छे, बुरे करोगे तो बुरे, और दोनों ही ज़िंदगी में किसी न किसी तौर पे मौजूद भी होते हैं। दूसरी चीज़, अल्लाह ताला ने नफ्स इंसानी की केस में अल्लाह ताला ने इंसान को जो कुछ दिया, कुव्वत सोच, ये देखकर दुनिया में बेखबर नहीं छोड़ दिया। एक इल्हाम फितरी तौर पे लाशौर में नेकी और बदी का डाल दिया, बुरे और भले की तमीज़, खैर और शर में फ़र्क, और फिर इंसान का मुस्तकबिल, इरादा, फैसला, जो करोगे उसका तुम्हारे आने वाले दिनों में तुम पर असर पड़ेगा। और अगर देखा जाए तो सबसे खूबसूरत बात क्या है? नफ्स को पाक कर लो। कद अफलह मन ज़क्काहा व कद ख़ाब मन दस्साहा। ये है असल में पूरी बातों का खुलासा। नफ्स को पाक कर लो, दबा लो इसको, नाजायज़ चीज़ें छोड़ दो, वरना फिर कौम समूद और फिरौनियों वाला हाल होगा। अल्लाह ताला से दुआ कि सूरज जैसी पाक ज़िंदगी हमारी कर दे, रोज़े रोशन, दिल के शक, जहन की इबहाम सब दूर कर दे, और इस तरह से अल्लाह ताला में फितरत पे कर दे कि जितने मासूम इस दुनिया में आए थे इतनी ही मासूमियत की हालत में दुनिया से जाएं, और अल्लाह ताला हमारी इसलाह फरमा दे। पूरे पारे में आप देखिए कि तकरीबन हर सूरत में ज़ब्ते नफ्स, तज़किया, इसकी बात हो रही है, क्योंकि यही है पूरे कुरान का टारगेट कि इंसान को सेल्फ कंट्रोल है। आज आप देखिए कि जिन लोगों ने इन चीज़ों से अपने आप को आज़ाद किया वो शुतर बेमुहार की तरह फिरने लगे, कोई पूछ नहीं सकता। एक हद टूटी तो दूसरी पे, दूसरी हद टूटी तो तीसरी पे, होते होते गुनाह करते हुए जानवरों वाले गुनाहों पर आ गए, फिर भी खुद को इंसान कहने का शौक है। अगली सूरत देखते हैं, सूरत लैल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल्लैलि इज़ा यख्शा वन्नहारि इज़ा तजल्ला वमा खलक़ल ज़िकर वल्उन्सा। कसम है रात की जबकि वो छा जाए और दिन की जबकि वो रोशन हो जाए, और इस ज़ात की जिसने नर और मादा को पैदा किया। क्या है इन कसमों का जवाब? इन्नसा यकुम लशत्ता। दर हकीकत तुम लोगों की कोशिशें मुख्तलिफ किस्म की हैं, यानी कोई तो अच्छे कामों में कोशिशें कर रहे खैर को फैलाने की और कोई शर को, कोई नफ्स पे काबू पाता है तो कोई नफ्स को खुला छोड़ता है। फम मन आता वत्तका वसद्दक बिल हुस्ना फसनुयस्सिरुहु लिल्युस्रा। बस जिसने राह खुदा में माल दिया और अल्लाह की नाफरमानी से परहेज़ किया और भलाई को सच माना, ये अबू बकर सिद्दीक की खूबियाँ, इसको हम आसान रास्ते के लिए सहूलत देंगे, और इसके बरक्स जिसने बुखल किया और अपने रब से बेनियाजी बरती और भलाई को छुटलाया, इसको हम सख्त रास्ते के लिए सहूलत देंगे। इसका माल आखिर इसके किस काम आएगा जबकि वो हलाक हो जाए। सोचिए, बात तो बड़ी सच है। क्या करना है उस माल का कि जिसको पाने के बाद तुम खुद हलाक हो? क्या करनी है वो गाड़ी जो आपकी मौत के बाद आपको मिले? किसी काम नहीं, फिर तो आपको मैयत गाड़ी पे जाना पड़ेगा। इसलिए दुनिया की चीज़ें ज़िंदगी ही में इनकी ज़रूरत है, बाद में तो सब ख़त्म होगा। क्या फ़ायदा उस माल का जब वो हलाक किया जाएगा? इसका माल आखिर इसके किस काम आएगा जबकि वो हलाक हो जाए? इस पे गौर कीजिएगा बाद में। इन अलैना लिलहुदा व इन लना लिलआखिरत वलूला। बेशक रास्ता बताना हमारे ज़िम्मे है। नोट कीजिएगा, रास्ता बताना, रास्ते पे चलाना नहीं। और दर हकीकत आखरत और दुनिया दोनों के हम ही मालिक हैं। यानी जाओ ले लो फिर हमें नाराज़ करके, दुनिया कितनी को मिलती है? नाफरमानी से रिस्क कमाते हुए बंदा इस बात को सोचे। बस मैंने तुमको खबरदार कर दिया है भड़कती हुई आग से, इसमें नहीं झुलसेगा मगर वो इंतहाई बदबخت जिसने छुटलाया और मुंह फेरा और इससे दूर रखा जाएगा, वो नहायत परहेजगार और पाकीज़ा। नहायत परहेजगार जो पाकीज़ा होने की खातिर माल खर्च करता है, इस पर किसी का कोई एहसान नहीं जिसका बदला इसे देना हो। इल्लब्तिगा वजह रब्बिल आला, वो तो सिर्फ अपने रब बरतर की रजा जोई के लिए ये काम करता है। वला सौफा यरदा, और ज़रूर वो इससे खुश होगा। देखिए कितनी बड़ी खुशखबरी है। ये कैसे हो सकता है कि तुम अल्लाह को खुश करना चाहो और अल्लाह तुमसे खुश ना हो? ये कैसे हो सकता है कि तुम अल्लाह की नाराज़गी से डरते रहो और अल्लाह तुमसे नाराज़ हो जाए? नामुमकिन है। हर इंसान अगर इस चीज़ पे गौर करे ना कि अल्लाह ताला ने इस दुनिया में मुझे क्यों भेजा, हक और बातिल का फ़र्क बता के, अक़ल देकर, फितरत पे तौहीद की छाप लगा कर, कायनात पे गौर व फिक्र की ताकत देकर, तो फिर कभी भी नहीं भटकेगा। हर बंदा अपने आप पे गहरी नज़र रखे, क्या करती हूँ क्या नहीं। आज आप देखिए कि दुनिया के अफराद हों, कौमें हों, गिरोह हों, जो भी किसी काम के करने में कोशिश करते हैं उसका नतीजा उनको मिल जाता है। इसी तरह अल्लाह ताला ने दुनिया की और बहुत सारी चीज़ों को रखा है। अगर एक इंसान इस पे गौर व फिक्र करे तो कभी भी अपनी ज़िंदगी को खुलाए ना इस दुनिया के लिए। कितनी खूबसूरती से अल्लाह ताला ने तीन हकीकतें सूरत के आखिर में बता दी हैं कि अल्लाह ने ये दुनिया एक इम्तिहान के लिए बनाई, इंसान को बेखबर नहीं छोड़ दिया, ऐसे नहीं कर दिया कि पता नहीं ठीक है कि गलत, समझ नहीं आता क्या ठीक है क्या गलत है, सब समझ आता है। हाँ, जब ख्वाहिशों की पट्टी चढ़ती है ना आँखों पे, आरज़ुएं और अपने मन के लाड अच्छे लगते हैं ना, फिर नहीं समझ आता पता नहीं क्या है, सब पता है। तुम नहीं मानते, जुरत पैदा करो, कह दो नहीं मानना, ठीक तो ये है लेकिन मैं नहीं कर रही, बात समझ आएगी, अल्लाह हिदायत दे देगा एक दिन। और जब सिर्फ अपने नफ्स को मोटा करते हुए हर चीज़ को करें और जहाँ नफ्स पे चोट पड़े कि नहीं ये गलती है, नहीं नहीं आज के दौर में नहीं हो सकता, आज नहीं हो सकता, क्योंकि अब देखिए कि उस दौर में तो अल्लाह का रसूल मौजूद था, कुरान मौजूद था हिदायत के लिए, आज हदीस की सूरत में रसूल की बात और कुरान की सूरत में अल्लाह की बात मौजूद है। तो दुआ कीजिए कि ख्वाहिशों की ऐसी चट्टी ना पड़ जाए हमारे मुँह को कि जिसके बाद हमें बड़े बड़े दीन के हुक्म भी समझ ना आए और नफ्स पे काबू। इसके लिए एक इंसान अपने आप को जितना तैयार करे। सूरह दुहा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला वलल-आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला वलसौफ़ा युतीका रब्बुका फ़तर्दा। कसम है रोज़े रोशन की और रात की जबकि वो सुकून के साथ तारी हो जाए। ऐ नबी, तुम्हारे रब ने तुमको हरगिज़ नहीं छोड़ा और ना वो नाराज़ हुआ, और यकीनन तुम्हारे लिए बात का दौर पहले दौर से बेहतर है, और अन करीब तुम्हारा रब तुमको इतना देगा कि तुम खुश हो जाओगे। क्या इसने तुमको यतीम नहीं पाया और फिर ठिकाना फराहम किया, और तुम्हें नावाकिफ़ राह पाया फिर हिदायत बख्शी, और तुम्हें नादार पाया और फिर मालदार कर दिया? तो करो क्या, फम्मल यतीम फला तक्हर, वम्मा साइल फला तन्हर, वम्मा बिनेमति रब्बिक फहद्दिस। बस यतीम पर सख्ती ना करो और साइल को झिड़को नहीं, और अपने रब की नेमत का इजहार करो। आप देखिए कि इस सूरत में अल्लाह सुबहान ताला कितने खूबसूरत तरीके के साथ अपने नबी को बताते हैं। मायूस क्यों होंगे आप, अल्लाह ने तो आप पे माजी में भी इतने एहसान किए थे, आज क्या नहीं करेगा। एक एक चीज़ जिससे अल्लाह ने अपने नबी को गुजारा। आजकल सीरत पढ़ा रहे हैं एक जगह, तो चूंकि ये बातें सारी एक साथ सुन रहे हैं, जैसे लगता है कि वाकई अल्लाह के नबी के साथ एक नया ही ताल्लुक महसूस हो रहा है। इंशाल्लाह आपको भी सुनाएंगे। जिस तरह कुरान पाक हम तफसीर से पढ़ते हैं ना, इसी तरह सीरत भी एक तफसील से होती है और एक थोड़ी मुख्तसर होती है। तो बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि आजकल सीरत का दौरे कुरान चल रहा है। एक दिन हम अल्लाह के नबी के साथ बदर में होते हैं, तो दूसरे दिन ओहद में हैं, तो साथ ही साथ दूसरी जंगें चलती जाती हैं, तो बहुत ही दिल को सुकून मिलता है। वरना अल्लाह के नबी से मोहब्बत पैदा नहीं होती। अकीदत तो कह लेते हैं, रिस्पेक्ट तो हम करते हैं, लव नहीं महसूस होता, केयर नहीं महसूस होती। अल्लाह अपने नबी से नाराज़ नहीं थे, लेकिन इन आयतों में बता दिया कि जब भी दीन के काम करो फिर तुम्हें लगे हाय पता नहीं गलतियाँ तो नहीं हो रही, हाय पता नहीं कबूल है कि नहीं, तो तसल्लियाँ रखो। क्योंकि बाज़ दफ़ा दीन के काम करने वालों को शैतान इस तरह पीछे कर देता है, लेट डाउन, नहीं इतनी तो गलतियाँ होती हैं तुमसे, पता नहीं सवाब होना है कि नहीं, सब छोड़ दो, बस फिर गलतियाँ नहीं होंगी। ये नहीं कहता कि भी काम भी नहीं होगा, फिर ये नहीं कहता कि तुम्हारी नेकियाँ भी नहीं बढ़ रही, तुम्हारा डिपॉजिट भी कम हो जाएगा। हाँ, चंद छोटी छोटी खताएं जो बशरी खताएं हैं। मैं कहती हूँ जितनी ज़्यादा गलतियाँ होती हैं ना, उतना अल्लाह को प्यार आता होगा कि फिर भी नहीं छोड़ रहा बंदा, और गलतियों के बावजूद कमज़ोर बंदा है फिर भी काम बड़ा करना चाहता है। तो अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हम सब को बेहतरीन तरीके से अपने रास्ते में लगा दे, और जिस तरह अल्लाह अपने नबी को काफ़ी हुआ, हमें भी काफ़ी हो जाए। अगली सूरत है सूरत अलम नशरह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलम नशरह लक सदरक, ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، ورفعنا لك ذكرك، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب، وإلى ربك فارغب। ए नबी, क्या हमने आपका सीना आपके लिए खोल नहीं दिया और आप पर से वो भारी बोझ उतार न दिया जो आपकी कमर तोड़े डाल रहा था, और आपकी खातिर आपके जिक्र का आवाज़ा बुलंद कर दिया। बस हकीकत ये है कि तंगी के साथ फराही है, बेशक तंगी के साथ फराही है, यानी बाद अकनी माँ साथ, अभी तंगी अभी फराही, अभी तंगी अभी फराही, किसी दिन खुश किसी दिन दुखी, आज अभी अच्छा मूड कल बुरा मूड, आज अभी थके हुए कल रेस्ट किया हुआ, आज नींद से भरे हुए कल जागे जागे, जिंदगी इन्हीं दो चीज़ों के साथ है। करो क्या, फैजा फरोख्त फन सब, बस जब आप फारिग हो जाएं तो मेहनत करें, वइला रब्बिका फारग़ब, और अपने रब की तरफ ही रागिब हो जाओ। ये क्या बात हुई, आप देखिए कि अल्लाह के नबी को तसल्लियाँ देती हुई सूरत है। नबुवत से पहले कभी आपको इन हालात से वास्ता ही ना पड़ा जो नबुवत के बाद पड़ा और शुरू में ही पड़ गया। मुश्किलात मुश्किलात, राह चलतों पर आवाज़ें कसी जाएं, कोई सुनने को रवादार ना हो, बाइकॉट, खाटियों में बंद, क्या लगता होगा, ऐसा लगता होगा ये सब यहीं ख़त्म हो जाएगा। ऐसे ही लगता है, वाकई हर तहरीक के कुछ दिन ऐसे होते हैं लगता है सब ख़त्म हो जाएगा, अब कुछ नहीं बचना, कोई नहीं आएगा, अब सब ख़त्म। इखलास रखिए, सब आ जाएंगे वापस, आप अपना काम करते जाएं। ऐसे वक्तों में तसल्ली है कि गम ना कीजिए, अल्लाह आपको नेमतें दे रहा है, आपका शरे सदर कर दिया, इससे बड़ी कोई नेमत है। नेकी की तौफीक मिल जाए, गुनाह मुश्किल लगने लगे, नबुवत के काम आसान हो जाएं, आपकी तारीफें होने लगें, जिक्र खैर होने लगे, लोग आपको दुआओं में शामिल करें, लोग आपसे रहनुमाई लें, इससे भी कोई बड़ी नेमत है। आप देखिए किस तरह अल्लाह ताला बता रहा है कि ये मुश्किलात का दौर ये ज़्यादा लंबा नहीं है, तंगी के साथ फराखी का दौर है, बाद वाले दिन आने वाले दिन पिछले दिनों से अच्छे हैं। कितनी खुशी होती है सोच के, और ये कहा जाए कि आज तो आप करोड़पति हैं, बस अब अगले ही दो चार सालों में आप फाकों पे आ जाएंगे। आज तो आपके बच्चे बहुत अच्छे आपकी बात सुन रहे हैं, अगले सालों में वो बहुत बदतमीज हो जाएंगे, आपकी बात ही नहीं मानेंगे, सुनेंगे नहीं। मेरे लिए आज की खुशियां भी खुशियां ना रहे। और अल्लाह क्या कह रहा है, आने वाला दौर बाद वाले दौर से बेहतर है। आपका रब आपको वो देगा, आपका दिल खुश हो जाएगा। क्यों ना तसल्लियाँ, फिर क्यों ना इंसान दुखों में भी मुस्कुराए, गमों में मुस्कुराए। खंदक में पाँव है, मट्टी पेट पे लगी हुई है, पेट पे पत्थर है, तो फिर क्यों ना कहे कि कैसरो किसरा की चाबियाँ दिखाई गई और उमर फारस मुझे दिखा दिए गए। ये हैं वो तसल्लियाँ जो तत्नस्सल अलैहिमुल मलाइका की सूरत में सच्चे मोमिन के दिल पर उतरती हैं, और अल्लाह ताला उसको फिर संभाल लेता है। ये दुआ किया करें कि अल्लाह की तरफ से ये तसल्लियाँ आती ही रहें। फिर तो बंदा बेमज़ा नहीं होता, गालियाँ सुन के बेमज़ा नहीं हुआ, किसी चीज़ से इंसान को फ़र्क नहीं पड़ता। वो कहता है मैंने इस काम को नहीं छोड़ना। आपको जब यकीन हो जाता है ना कि मैं ठीक काम कर रहा हूँ या ठीक जगह पे काम कर रहा हूँ, मेरी सोच ठीक है, मेरा मकसद ठीक है, मेरी ख्वाहिश ठीक है, तो आप देखिए कि फिर कोई अच्छा कहे कि बुरा आपको फ़र्क कोई नहीं पड़ता, कोई मेंशन करे कि ना करे। मुझे एक साथी की बात याद आती है, कहती थी मुझे स्कूल वाले डांटेंगे ना, मैं आऊँगी तो मुझे मारेंगे डांटेंगे, मैं फिर भी आऊँगी। क्यों? कि मुझे ये पता है कि स्कूल को मेरी ज़रूरत नहीं है, मुझे स्कूल की ज़रूरत है। आज मैं ये काम छोड़ूंगी तो मुझे शैतान पीछे कर देगा, मुझे मेहनत करके जोर लगा के आगे आना है। और हकीकत है, मैं आप सबको भी ये कहूँगी, कोई आपको काम नहीं करने देगा अगर आप खुद नहीं करेंगे। अगर ये शरह सदर नहीं हुआ ना, कब क्या करना है, कैसे करना है, और इनिशिएटिव होना, आगे बढ़ने की ख्वाहिश, तो आप याद रखिए कि आप पीछे रह जाएंगे। अल्लाह दीन के काम के अंदर एक क्वालिफिकेशन ये ज़रूर देखता है कि ये कितना संजीदा है। ये नहीं अल्लाह ताला देखता इसको आता क्या करना है, इसको कंप्यूटर भी आता है कि नहीं चलाना, हु केयर, अल्लाह को इसकी ज़रा परवाह नहीं। हाँ, अल्लाह को ये पता है कि लमनतल्लाह बिकल्बिन सलीम, जो अल्लाह के पास कल्बे सलीम लेकर आएगा, अल्लाह उसको कबूल करेगा। तो तड़पिए, टूटिए अल्लाह के पास और सच्चाइयाँ लेके जाएं। हो सकता है अभी ज़िंदगी में बड़े बड़े गुनाह ही नहीं छोड़े, अभी रिस्क हलाल ही नहीं पेट में पूरा सही आया, कहाँ अल्लाह नेकियाँ दे। याद रखिए कि अल्लाह कभी कभी नेकी करा लेता फासिक से, हमेशा नहीं कराता। इसके लिए तो बेदाग दामन, फिर भी कुछ कीचड़ धब्बे अल्लाह माफ़ कर देगा, लेकिन खुद को हर वक्त परखते रहें। सूरत 3, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वत्तीनी वज़्ज़ैतूनी वतूरी सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनी तक़वीम थुम्मा रददनाहु अस्फ़ल साफ़िलीन। कसम है इंजीर और जैतून की और तूरे सीना की और इस पुरामन शहर यानी मक्का की, इतनी कस्मों का जवाब, लकद खलकनल इंसान फ़ी अहसनी तक़वीम, हमने इंसान को बेहतरीन साख्त पर पैदा किया, फिर उसे उल्टा फेर कर हमने सब नीचों से नीचे कर दिया। बेहतरीन कब था? जब तौहीद पे था। निचलों से निचला कब हो गया? जब इसकी ज़िंदगी में शिर्क आ गया। लेकिन सारे नहीं, इल्लल्लज़ीना आमनू वअमिलुस्सालिहात, सिवाय इन लोगों के जो ईमान लाए और नेक अमल करते रहे, कि इनके लिए कभी ख़त्म ना होने वाला अजर है। बस ए नबी, इसके बाद कौन जज़ा व सज़ा के मामले में तुमको झुठला सकता है? अलैहिस्सल्लाहु बिअहकमिल हाकिमीन, क्या अल्लाह ताला सब हाकिमों से बड़ा हाकिम नहीं है? क्यों नहीं, हम इसका इकरार करते हैं कि अल्लाह से बड़ा हाकिम कोई नहीं, वो सबसे बड़ा है। अब देखिए कि इस सूरत में भी कितने नपे तुले अंदाज से अल्लाह ताला ने हम सबको बता दिया कि तुम बड़ी आला चीज़ हो। तुम्हें अल्लाह ने रुलने के लिए पैदा नहीं किया, दर दर के धक्के खाने के लिए पैदा नहीं किया। कभी मैं किसी नशई को या शराबी को या गलत हरकतें करते, गलत हाल हुलिये में सड़कों के किनारे देखूँ ना राह चलते, तो मैं ये आयतें सोचती हूँ, हाय इंसान, तुझे तेरी माँ ने इसलिए पैदा किया, इतने महीने पेट में रखा, कि तू सड़कों पे रुले, शराबें पिए, गंदे काम करे, तेरी क्या ज़िंदगी है? لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم، لیکن انسان اپنا مول نہیں ڈالتا، اپنی قیمت نہیں پہچانتا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنی فکر لگ جائے، پھر کس طرح سے اللہ تعالیٰ انسان کو توڑتا ہے. سوچو زندگی کا مقصد، ایسے ہی نہ چلے جاؤ کھایا پیا موج مستی. اگر آپ نے غور کیا نا تو اس سورت کے شروع میں تین مختلف نبیوں کی قوموں کی باتیں ہیں. والتین والزیتون، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جہاں سے اپنے مشن کو لے کر اٹھے وہاں زیتون اور انجیر رکتی تھی. وطور سینین، حضرت موسیٰ کی قوم اور موسیٰ کا قصہ. طور سینا، اور وحاذا البلد الامین، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مسکن. گویا کہ تین نبیوں کی شریعتوں کو جمع کر کے کہہ دیا، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. تو کیا میں احسن کام کرتی ہوں؟ ہمارا جسم کتنا احسن ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کس طرح ہمیں احسن سے بھی احسن درجے پہ پیدا کیا؟ یہ الگ بات ہے کہ انسان پھر جسم کے انہی اعضاء سے غلط کام کروائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم ایسے کام کریں کہ قیامت کے دن پکار لگ جائے کہ اس بندے کے کام اتنے زیادہ تھے کہ اب اس کو ایک نہ ختم ہونے والا اجر ملے گا. اور وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے بندے کو فلہم اجر غیر ممنون، نہ ختم ہونے والا اجر دے رہا ہے. اور یہ کس کو دے گا؟ جس نے دنیا میں نہ ختم ہونے والی نیکیاں کی، ان تھک کام کیا اللہ کے رستوں میں، اپنی توفیق کے مطابق اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑا. اور مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ اس کی توفیق سب سے زیادہ دے کہ ہم اس راستے میں جمے رہیں اور ڈٹے رہیں. اگلی سورت ہے سورت طلق، ابتدائی وحی، پھر غور و فکر کیجئے گا اس پہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق. اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. پڑھو، اے نبی اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا، جمے ہوئے خون کے ایک لوتھڑے سے انسان کی تخلیق کی. پڑھو، اور تمہارا رب بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا اور انسان کو وہ علم دیا جس سے وہ نہ جانتا تھا. کیا دکھ رہا پہلی وحی میں؟ علم. پڑھو بسم ربی کا، رب کے نام والا علم. یہ نہیں کہ رب سے کٹا ہوا علم، خدا فراموش علم نہیں سیکھنا کہ دنیا کا جتنا سیکھتے جائیں اتنی گردن اکڑتی جائے، ہرگز نہیں. انسان سرکشی کرتا ہے اس بنا پر کہ وہ اپنے آپ کو بے نیاز دیکھتا ہے، حالانکہ پلٹنا یقیناً تیرے رب ہی کی طرف ہے. تم نے دیکھا اس شخص کو جو ایک بندے کو منع کرتا ہے جبکہ وہ نماز پڑھتا ہو، تمہارا کیا خیال ہے اگر وہ بندہ راہ راست پر ہو یا پرہیزگاری کی تلقین کرتا ہو؟ تمہارا کیا خیال ہے کہ اگر یہ منع کرنے والا شخص حق کو جھٹلاتا اور منہ موڑتا ہو، کیا وہ نہیں جانتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ ہرگز نہیں، اگر وہ باز نہ آیا تو ہم اس کی پیشانی کے بال پکڑ کر کھینچیں گے، اس پیشانی کو جو جھوٹی اور سخت خطا کار ہے. وہ بلا لے اپنے حامیوں کی ٹولی کو، ہم بھی عذاب کے فرشتوں کو بلا لیں گے. ہرگز نہیں، اس کی بات نہ مانو اور سجدہ کرو اپنے رب کا قرب حاصل کرنے کے لیے. آپ دیکھیے کہ پہلی وحی اور دوسرا حصہ کل ان الانسان لیطغی سے لے کے سورت کے آخر تک، دو حصوں میں یہ سورت نازل ہوئی. اور ان آیتوں کو اگر آپ غور و فکر سے دیکھیں تو تخلیق کا مقصد سمجھ آ جاتا ہے. آج امت مسلمہ اگر صرف اس پہلی وحی کے مطابق اللہ کے ساتھ تعلق جوڑنے لگ جائے نا، تو آپ دیکھیے کہ ان کے دنیا کے 98% مسائل حل ہو جائیں. دعا کیجئے کہ اللہ ہمیں ایسی سمجھ دے جو کبھی نہ جائیں، اور جن حالات میں اللہ کے نبی پر یہ دین اترا، ہم پہ تبھی وہ حالات بھی نہیں آئے. ہم تو عمل نہ کریں، ہماری مرضی، ہمیں کوئی روکتا نہیں. اس دور میں تو نمازیں پڑھنے والوں کو سزائیں ملتی تھیں. اللہ تعالیٰ ہماری اصلاح فرما دے. اگلی سورت ہے سورت القدر، اور اس رخ کی آخری سورت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنَ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ. बेशक हमने इस कुरान को शब कदर में नाजिल किया और तुम क्या जानो कि शब कदर क्या है. शब कदर हजार महीनों से ज्यादा बेहतर है. फरिश्ते और रूह इसमें अपने रब के इज़्ज़त से हर हुक्म लेकर उतरते हैं. वो रात सरासर सलामती है तलुए फजर तक. इतनी कीमती है ये किताब जो मेरे और आपके हाथों में. लैलतुल कदर की वजह नज़ूल कुरान. अल्लाह ने उस रात को कदर वाली रात कह दिया जिस दिन कुरान नाजिल हुआ, और हज़ार महीनों की इबादत कह दिया एक रात की इबादत को. अगर आप हिसाब लगाएं ना तो लैलतुल कदर की रात का एक मिनट हमारी आम जिंदगी के 3 दिनों के बराबर बनता है. हिसाब बाद में जोड़ लीजिएगा. गोया कि जिसने उस रात का एक मिनट ज़ाया किया उसने आम दिनों के 3 दिन ज़ाया कर दिए. इसके बावजूद भी हम सब सोचे कि हमने लैलतुल कदर की कितनी कोशिश की और इस किताब की आज कितनी कदर करते हैं. हकीकत है ये कदरों वाली किताब है. जिसने इसको थामा अल्लाह ने उसकी कदर की हद कर दी. दुआ करते हैं कि हम भी इसकी कदर करें. ना कदरियों से अल्लाह हमें बचाए, बेकायदगियों से बचाए. यहाँ फिर वो पूरा हुआ. सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक.